तो चलिए हम देखते हैं कि तौहीद क्या होती है और उसकी कितनी अकसाम है। पहली चीज़, तौहीद की तीन किस्में। पहली किस्म है तौहीद फिज़ात, अल्लाह की ज़ात के अंदर उसको एक मानना। नाम लिख लें, फिर थोड़ी थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको। दूसरी होती है तौहीद इबादा, इबादत यानी इबादत का हक भी सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, यानी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए। और तीसरी तौहीद होती है तौहीद सिफात। तौहीद फिज़ात क्या है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह को इसकी ज़ात में अकेला, बेमिसाल और ला शरीक माना जाए, और ये माना जाए कि ना उसकी बीवी है, ना औलाद, ना माँ और ना बाप, ना वो किसी की ज़ात का जुज़ है और ना कोई दूसरा उसकी ज़ात का जुज़ है। इस तारीफ़ पे देखा जाए तो यहूद, नसारा और मुशरिकीन मक्का के तीनों के नज़रियात बातिल हो गए। आज भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह का कोई बेटा है या फलां अल्लाह की बेटी है या फलां अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ रखता है, तो उसने अल्लाह की ज़ात के अंदर शिर्क किया। अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ सिखाई जाती है। और यहाँ इस फिज़ात के बारे में हमारा ये भी नज़रिया होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ अर्श पे है। क्योंकि आप ये चीज़ें आज पढ़ें ना, आप किसी भी नए इंसान से डिस्कस कर सकते हैं तो आप उसको बिल्कुल टू दी पॉइंट बात बता सकते हैं कि इस्लाम अल्लाह के बारे में क्या कहता है, कि वो एक है, अकेला है, ना उसकी कोई माँ, ना उसका बाप, ना उसकी बीवी, ना बेटा। क्योंकि इंसानों की ज़रूरियात है ना, हम इंसान दुनिया में आते हैं फिर चले जाएंगे, अल्लाह को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह की ज़ात के बारे में हमारे जहन में रहे कि अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ, यानी जो हमारा वजूद है इसके साथ आसमान पे है। कहाँ? सातवें आसमान के ऊपर, अर्श पर। अर्श के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है। और दूसरी बात, इससे अगली पॉइंट यानी पॉइंट्स में लिखते जाएं कि अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत हर चीज़ को घेरे हुए। आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं, वसी कुर्सीयुहुस्समावाति वलर्द वला युहीतून बिशय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अल्लाह की ज़ात आसमान पे, लेकिन वहाँ से इतना उसका इल्म है कि वो हमारे दिलों के हाल तक जानता है। हम रात को क्या करते हैं, हम दिन को क्या करते हैं, इसको भी अल्लाह की ज़ात बेहतरीन तरीके से जानती है। एक बातिल नज़रिया क्या आता है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ हर जगह मौजूद है। इसको बाज़ दफ़ा लोग हलूल कहते हैं और कुछ इस किस्म की कैफियत कहते हैं, तो ये शिर्क का नज़रिया आ जाता है। अल्लाह अपनी ज़ात से एक है, अकेला है, आसमान पे है, वहाँ रह के इंसान की सुनता है। अगर इसमें किसी ने अल्लाह की ज़ात के साथ कोई शरीक करार दिया ना, तो आप समझ लीजिए कि वो तौहीद के दर्जे से नीचे गिर गया। दूसरी होती है तौहीद फिल इबादा, अल्लाह की ज़ात जो है वही इसके काबिल है कि उसकी इबादत की जाए, यानी हर किस्म की इबादत को सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस करना, ना किसी दूसरे को उसमें शरीक करना और ना किसी और को उसमें लेना। अब सवाल पैदा होता है कि इबादत क्या होती है? हम उमूमन हमारे जहन में क्या होता है, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इसी को इबादत कहते हैं ना? नहीं, इबादत की बेसिकली तीन है, लेकिन आम मारूफ दो किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है इबादत की? वर्शिप के मानों में, पूजा पाठ करना, परस्तिश करना, फिज़िकली लिटरली। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अब अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं ना, अल्लाह के आगे झुकते हैं, लेकिन उस वक़्त तसव्वुर में किसी और का कर लेना, सामने बुत रख लेना, किसी की तस्वीर रख लेना, शिर्क हो जाएगा ना। जो लोग आइडल वर्शिपर्स हैं वो शिर्क इसलिए करते हैं कि उन्होंने अल्लाह की ज़ात के बजाय किसी और को सामने रख लिया। बाज़ सूरज को पूजते हैं, बाज़ आग को पूजते हैं, बाज़ सांपों को पूजते हैं, तो वर्शिप के मानों में। इसका जिक्र सूरत हामीम सजदा की आयत 37 में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल्क़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, कि ना सूरज और चाँद को सजदा करो बल्कि उसको सजदा करो जिसने उनको पैदा किया, अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तो लिहाजा इसमें अगर आप देखें तो जिसने किसी की कब्र पे जाके सजदा किया वो क्या हुआ? इबादत हो गया ना। खड़ा होना क्या होता है? नमाज में हम क़याम करते हैं ना, इबादत है ना। अब आप किसी की के लिए इस नीयत से खड़े हो गए कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। बाज़ जगह आपने देखा होगा कि बुज़ुर्गों के आने पे लोग इज़्ज़त से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी की कब्र पे जाके लोग खड़े होते हैं और कहते हैं खड़े होने से क्या हम सजदा तो नहीं करते, तो खड़ा होना भी तो इबादत है। आप किसी के मतलब अगर चले मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मैं क्लास में हूँ, आप सब रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे खड़े हो जाते हैं, इट्स नॉट अलाउड। हमारे आज के तालीमी कल्चर में ये चीज़ आ चुकी है कि स्कूलों में जब टीचर्स क्लासरूम में आते हैं तो स्टूडेंट खड़े होते हैं। इस कानून को, इस रूल को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बैठे हुए घर में कोई अंदर एंटर होता है, आप उसके इस्तकबाल के लिए, वेलकम कहने के लिए खड़े हो जाते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई हर्ज नहीं। आप देख रहे हैं कोई बुज़ुर्ग आ रहा है, आप उनकी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। नीयत का फ़र्क है ना। आप हम दीन का कोई भी रिचुअल जो नेकी समझ के खड़े हों वो इबादत है। अब इसकी कई मिसालें हैं जो इस वक्त अभी मैं आपको नहीं देना चाहती क्योंकि आपने अभी पूरा टॉपिक नहीं सुना। हाँ, हम सुनने वाले ज़रूर अपने उन मज़हबी त्यौहारों या ओकेजन्स या जो हम सेरेमनीज़ या गेट टुगेदर्स करते हैं उसमें गौर से देखें और सोचें कि कौन से काम है कि जिसमें हम इबादत की नीयत से खड़े भी हो जाते हैं बस दफ़ा, फिर कुछ पढ़ने भी लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए, ना सजदा किसी को और कर सकते हैं, ना हम खड़े हो सकते हैं, ना रुकू कर सकते हैं, ना क़्याम, ना हम में से कोई ये कह सकता है कि मैंने आज रोज़ा शैतान के लिए रखा है या मैंने किसी और को खुश करने के लिए रखा है। इबादत के सारे रिचुअल इसमें आ जाते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो हमने अल्लाह की ज़ात के अंदर शिर्क कर दिया, ये है पूजा और परस्तिश का माना। इसी तरह इबादत का दूसरा एक माना क्या होता है, इताअत, सबमिशन, फर्मा बरदारी। इसकी दलील सूरत यासीन की आयत नंबर 60 है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन। ए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की इबादत यानी उसकी पैरवी ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इताअत, सबमिशन। अब देखिए कितना रकीक नुक्ता है, अल्लाह के सिवा दूसरों की बात को इस तरह मानना कि वो अल्लाह की मुखालफत हो, मतलब अल्लाह का हुक्म है कि ये काम करो और दूसरा कोई कहता है इस काम को ना करो, क्या हो गया, शिर्क हो गया। किसी दूसरे की खुशी के लिए ऐसा काम कर लेना जिसे अल्लाह नाराज़ है, आपने क्या किया, इताअत कर ली किसी की। नबी सल्लम ने फरमाया कि इन्नमत्तात फिल मारूफ, इताअत और फर्मा बरदारी सिर्फ मारूफ कामों में। बस आप देखिए कि अगर आप बच्चियां बैठी हैं यहाँ और आपके लिए इस वक्त सबसे रिस्पेक्टफुल जो ज़ात है दुनिया में इंसानों में वो आपके माँ बाप है। इसी अपनी सीरीज़ में हमारा एक पूरा दिन टॉपिक ही पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशंस का होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स के इतने हकूक और उनकी इतनी रिस्पेक्ट के बावजूद अगर किसी के माँ बाप उसको कोई शिर्क की बात कहें, कोई नाफरमानी की बात कहें, कोई मुशरिक माँ बाप है वो कहे चलो फलां कब्र पे सजदा करो, चलो फलां बुज़ुर्ग से जाके दुआ मांगो, या फलां जगह चलो ये करो, पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम उस काम को नहीं करेंगे। रूट नहीं होना, आगे से शाउट नहीं करना, उनको गलत सलत नहीं कहना, लेकिन वो काम नहीं करना। आप में से जो ख़वातीन शादीशुदा है, आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जो हैं, जिनकी बात माननी है, वो आपके शौहर हैं, हस्बेंड्स हैं। आप उनकी हर बात मानेंगे, लेकिन हर वो बात जो अल्लाह के किसी हुक्म से टकराएगी, अगर आपने वो अल्लाह को नाराज़ करके उनकी मान ली, क्या करूँ शौहर नहीं मानते और शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती, तो ये क्या है, शिर्क फिल इबादत। हमने अल्लाह का हक बंदों को दे दिया। ठीक है, फिर इसी तरह इसी के अंदर इबादत के लफ्ज़ों में एक तीसरा मानी आता है, बंदगी का, स्लेवरी। बंदा अल्लाह के आगे इतना झुक जाए कि अपने आप को अल्लाह के सामने गुलाम महसूस करे, अगर ये कैफियत नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये शिर्क है। अब यहाँ आप एक सवाल लिखे अपने पास, अल्लाह के सिवा किस किस की इताअत या फरमा बरदारी की जाती है, मैं किसकी इबादत करती हूँ, सोचिए ज़रा। सबसे ज़्यादा तो हम किसकी मानते हैं, अपनी मानते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हैया अलस्सला हैया अलफला, उठो नमाज की तरफ, अस्सला तो खैरु मिनन्नौम, अब फजर का वक्त है, ये अजान हो रही है, اور آپ اس اذان کو سن کے الارم بند کر کے سوتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کیا, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی آپ نے اپنے نفس کی مان لی, نفس کی مانی تو نفس آپ کا خدا بن گیا, آپ نے شرک کیا. یعنی آپ نے فجر کی نماز نہیں قضا کی صرف, آپ نے شرک کیا. اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے سوا جس بت کو پوجا جاتا ہے نا, وہ انسان کا نفس ہے, مائی سیلف. آج کے دور کا کلچر کیا ہے؟ مائی سیلف, مائی اسٹائل, اٹس مائی لائف, اٹس مائی وے, مجھے اب جو چاہو کرو, جیسا چاہو کرو, ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن. یعنی اس وقت لا دینیت کا جو ایک تصور آ گیا, اس میں سب سے بڑا بت آپ کی اپنی ذات ہے. یو ہیو یور اون چوائس. اسی سے ماں باپ کو ایک بھی ایگزمپٹ کر دیا, ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے تمہیں روکنے ٹوکنے کا. بیویوں کو شوہروں کے آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ وہ شوہر کی خدمت کرنے کو تیار نہیں. تو آپ ذرا فیل کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی ہو جاتی ہیں بعد میں. تو اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا میں ایسا شرک تو نہیں کر رہی. سورت فرقان کی آیت 43 میں آتا ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا؟ اب یہ آپ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, ایک دن میں کتنی دفعہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم چھوڑتی ہوں؟ اتنی دفعہ ہم سے پھر شرک ہوا. اور کون سا شرک ہوا؟ شرک فی العبادہ. توحید فی الربوبیہ, توحید جب ختم ہوئی تو اس کا اپوزٹ شرک ہو گیا. پھر اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 121 میں, سورۃ مائدہ کی آیت 44 میں بھی اسی ٹاپک کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسری قسم توحید کی ہے, توحید صفات. پھر صفات وہ کیا ہوتی ہے؟ توحید صفات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں سے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں, یکتا, بے مثال اور لا شریک مانا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ سنتا ہے, وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اس میں 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مثال ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سنتے ہیں نا, اور کیسا سنتے ہیں؟ ہر ایک کا سنتے ہیں. کوئی اونچی بولے, کوئی چھپ کے بولے, پھر سب وقت سنتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں. اس وقت میں یہاں بات کر رہی ہوں نا, آپ میں سے جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے بس آپ سن رہے ہیں. اس وقت دنیا میں آپ کو تک کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے مدعا مانگ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کی ساتھ سن رہے ہیں, ہے کوئی تقابل؟ اب اگر یہ کوئی کہتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ویسے ہی فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں, شرک کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی ہے, علام الغیوب, غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, کل کیا ہونا ہے وہ اس کو پتہ ہے. اگر ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہوگا, یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ان کو آنے والے وقت کی پہلے ہی خبریں مل جاتی ہیں, شرک ہو گیا. فلاں کو تو میرے دل کی بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کیا سوچا ہوا ہے. کئی دفعہ ہم نادانی میں اتنے جملے بول دیتے ہیں, فلاں کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, اس کو تو بس ایک دم اشارہ ہو جاتا ہے, یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی نہیں پہنچا ہوا, اللہ جو علم دینا چاہتا ہے وہی ملتا ہے. تو اللہ کی تعالیٰ کی صفت, آپ کہتے ہیں فلاں قبر پہ جاؤ فلاں دعاؤں کو سنتا ہے, اللہ سنتا ہے دعاؤں کو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں اللہ کی صفات کسی انسان کو دی جائے, وہ سب چیزیں انسان کو شرک کی طرف مائل کرتی ہیں. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی شاباش, اس میں یہ بھی چیز آتی ہے, مستقبل کا حال معلوم کرنا, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. اچھی مثال دی آپ نے شاباش, کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہفتہ کیسا گزرے گا, کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر ہر سال سے پہلے جب نیا سال آتا ہے تو کئی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, اس سال قیامت آ جائے گی, اس سال یہ ہو جائے گا. دیکھیے ایک وہ چیزیں جو سائنسی ٹولز کو استعمال کرتے ہیں نا, مثلا کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی 2 دن بعد سورج گرہن ہوگا, یہ کوئی شرک نہیں ہے. کیوں؟ مشینیں استعمال کی, کسی سبب کو استعمال کر کے اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ اور چیز ہے. مثلا آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, اور اگر الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے کیونکہ مشین نے دیکھ لیا, تو شرک نہیں ہے. ہاں کوئی ڈاکٹر بغیر مشین استعمال کیے بتائے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ شرک ہے. تو ठीक है। तो ये एक बड़े बारीक नुक्ते हैं, इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखते ही जाएंगे। आज के लिए सिर्फ आप इतना ही जहन में रखिएगा कि अपनी मामूलात में से सोचें, अपने बोले हुए जुमलों को सोचें। तीनों में से कोई एक किस्म का शिर्क तो मुझसे नहीं हो रहा, अल्लाह के अलावा किसी और की इतनी बात तो नहीं मान रहे। अल्लाह को नाराज़ करके आप दूसरे बंदे की बात मान लेते हैं ना, तो आपने शिर्क कर दिया। हाँ, फिर इसी तरह दूसरी चीज़ कि अल्लाह की सिफात किसी दूसरे में ढूंढनी, शिर्क हो जाता है। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि अल्लाह की ज़ात को मुख्तलिफ रखना। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात इंसान के अंदर है, हलूल का नज़रिया, और इसमें अजीब व गरीब कहानियाँ खड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस सब चीज़ों के ऊपर हमारा जहन खुलेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।